शांति। तो विशेष आज का विषय है इस सीजन की बाबा की मुरलियों का सार। वैसे तो और भी एक मुरली बाकी है, फिर भी अब तक हम सभी इस सीजन में 10 मुरलियां सुन चुके हैं। तो इस सीजन में बाबा के मुरलियों का सार क्या रहा, इस विषय पर हम सभी चर्चा करेंगे। वैसे तो सीजन की मुरलियां बड़ी ही महत्व की होती है, और सीजन की मुरलियों में जो बाबा इशारा देते हैं वो इशारा बड़ा महत्व का होता है। इसलिए सीजन की मुरलियों की बातें हमारे कानों में सदा गूंजनी चाहिए। जैसे अभी भी गीत सुन रहे थे, सदा मुरली की धुन गुनगुन कर, क्योंकि अगर ये मुरली की बातें आपके कानों में गूंजती रहेगी तो वर्तमान समय आपके सामने जो माया आ रही वो माया कैसे आती है, क्यों आते हैं, उसको कैसे भगाना है, उससे कैसे बचना है, वो सभी बातों का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर आप मुरलियों को ही भूल जाएंगे तो इतना खजाना होने के बाद भी आप समस्या में रहेंगे, तो भी दुखी रहेंगे। इसलिए सीजन की मुरलियों का बहुत महत्व है। कई भाई बहने पूछते हैं कि अब हमें समय अनुसार क्या करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वास्तव में इसका जवाब यह है, समय अनुसार हमें कोई और कोई नया प्लान नहीं बनाना है, समय अनुसार कुछ और नया नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, जो समय अनुसार बाबा जो इशारा दे रहे हैं उसको ही करना है, तब हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि जो सीजन की बाबा की मुरलियां चलते हैं, किस आधार से चलती है, बाबा परमधाम से देखता है बच्चों को माया किस रूप से आ रहे हैं, बच्चों को किस प्रकार के और क्यों विघ्न आ रहे हैं, बच्चों का योग क्यों नहीं लग रहा है। इन बातों को ऊपर से देखते हुए बाबा क्या करता है, मुरलियों में उसके जवाब देता है। इसीलिए हमें जो कहा है उसको ही करना है, और वही हमारी समस्या है। तो इसीलिए मुरली की बातें हमें याद रखनी है। और वैसा भी जो टीचर क्या करता है, टीचर पढ़ाता है, जो पढ़ाता है वही बच्चों को क्या करता है, कुछ होमवर्क देता है। टीचर ने कहा कि तुम आठवें लेसन के नीचे जो कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको लिख के लाओ, और बच्चे ने इतना होशियारी की 12वें लेसन के नीचे के लिख के लाया, तो क्या टीचर खुश हो जाएगा। इसी तरह हमें बाबा ने कहा है कुछ और हमने करते कुछ, तो कैसी सफलता मिलेगी। इसीलिए हमें वही पुरुषार्थ करना है जो बाबा ने कहा है, नहीं तो जैसे एक अपनी सीढ़ी बने उसमें एक बहुत सुंदर चित्र है, लास्ट में क्या चित्र है, एक भिखारी है, वो भारत का दिखाया है, भिखारी है, उसके सिर के नीचे गीता का शास्त्र है लेकिन उसके हाथ में कटोरा है, वो भीख मांग रहा है। वो चित्र दुनिया वालों का नहीं है, भारत वालों का नहीं है, लेकिन यह ब्राह्मणों का चित्र है। ब्राह्मणों के पास भी सच्ची गीता मुरली है, सच्ची गीता, ये सब उनके अलमारी में भरा पड़ा है, डायरी में भरा पड़ा है, लेकिन सिर के नीचे पकड़ा हुआ है। फिर कहते योग लगता ही नहीं, बाबा ये समस्या आते हैं, ये विघन आते हैं, ये परिस्थिति आते हैं, क्यों? क्योंकि उस शास्त्र की स्टडी करते ही नहीं, उसकी बातों को बुद्धि में रखते ही नहीं। तो वास्तव में हमारे समस्या का समाधान किसी औरों के पास नहीं है, सभी मुरली में सब बातें हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मुरलियों की स्टडी करो। तो उन मुरलियों को याद कैसे रखें? टोटल 10 मुरली सुनी, तो इन 10 मुरलियों को हम कैसे याद रखें और उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? मुरली हमें पूरी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मुरली कोई विशेष टॉपिक को लेकर के चलती है। कोई ना कोई टॉपिक रहता है और उस टॉपिक को लेकर के बाबा पूरी मुरली चलाता है। तो हमें केवल उस टॉपिक को याद रखना है तो मुरली के अंदर की सब बातें याद आएगी। तो इस सीजन की 10 मुरली, तो सबसे पहली जो मुरली चली शायद उस समय फॉरेनर सीजन था, पहला ग्रुप था, 20 अक्टूबर की वो मुरली थी। और उसी मुरली में बाबा ने कहा था, उस मुरली का टोटल सार था संतुष्ट मनी बन, संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट बनो और सबको संतुष्ट करो, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। यह टोटल उस मुरली का सार था संतुष्टता। फिर पूरा उसका विस्तार, संतुष्टता के क्या फायदे हैं, अगर संतुष्ट नहीं बनेंगे तो क्या होगा। तो हमें केवल उस संतुष्टता की बात को याद रखना है और चार्ट भी चेक करना है, क्या मेरी सारा दिन संतुष्टता रही। बस एक ही पॉइंट का चार्ट। उसके बाद बाबा की दूसरी मुरली चली, शायद ये 15 नवंबर की सीजन का पहला ग्रुप था और उस मुरली का सार था सच्चे दिल और साफ दिल बन, परमात्मा स्नेही बन, हर प्राप्तियों का अनुभव की अथॉरिटी बनो, हर प्राप्तियों के अनुभव की अथॉरिटी बनो। लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कौन बन सकता है? जिसका दिल सच्चा, दिल साफ हो और परमात्मा के स्नेही हो, वही हर अनुभव की अथॉरिटी बन सकता है। यह उस मुरली का सार था, परमात्मा स्नेही, सच्चा दिल और साफ दिल। बस ये 2-3 बातें याद रखना है। उसके बाद बाबा की आगे जो मुरली चली 30 नवंबर, और उस 30 नवंबर की मुरली का सार था फुल स्टॉप लगा करके संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा के द्वारा सुख और शांति का सकास देने की सेवा करो। और सभी को याद होगी ये मुरली चली थी जिस समय बॉम्बे में कुछ आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ था, उसी समय की। उसके बाद बाबा की 15 दिसंबर की वाणी, और उस वाणी का सार था एक राज्य एक धर्म, लॉ और ऑर्डर का राज्य स्थापन करने का समय चल रहा है, ऐसे समय पर स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। वो था उस 15 नवंबर की मुरली का टोटल सार। उसके बाद नए वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा की वाणी चली थी 31 दिसंबर, और उस मुरली का सार था इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के द्वारा निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाओ और हर संकल्प हर श्वास को सफल कर सफलता मूर्त बनो। उसमें बाबा ने पूरा वर्ष के लिए लक्ष्य दिया था बाप समान बनने का, और उसके लिए बातें, बाप समान वही बन सकता है जो परिवर्तन कर निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाता है और अपना हर संकल्प हर श्वास सफल करता है, वही बाप समान बन सकता है। उसके बाद बाबा की थी 18 जनवरी की बाबा की मुरली थी, और ये मुरली 40 वर्ष पूरे हुए अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त होकर के, उसी उपलक्ष्य में ये मुरली थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न देने के लिए क्या करो, चार बातें याद रखो, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल बनाओ, और जीरो और हीरो को याद करो। उसमें 40 शब्द आते हैं ना, उसमें जीरो और साथ में ये चार बातें। उसके बाद बाबा की मुरली चली 5 फरवरी, और उस मुरली का टोटल सार था सेवा करते, डबल लाइट स्थिति, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। क्योंकि बाबा ने कहा कि भविष्य में हम सब देवता बनेंगे, लेकिन देवता वही बन सकता है जो फरिश्ता बनेगा, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो उसके लिए ये बार बार अभ्यास करना है, तब जाकर के फरिश्ता बनेंगे। उसके बाद बाबा की मुरली चली शिवरात्रि के लक्ष्य पर, शिवरात्रि की बाबा की मुरली शायद 22 फरवरी की थी। बाबा ने कहा कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट लेने के लिए फास्ट जाकर के फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए क्या करो, अपना हर श्वास और हर संकल्प क्या करो, समर्थ बनाओ। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो हमारा हर संकल्प और हर श्वास कैसा हो, समर्थ हो, और दिल सच्ची और साफ हो तो जरूरत पूरी होगी, उस मुरली का सार था। उसके बाद बाबा की मुरली चली 9 मार्च होली के उपलक्ष्य में, और उस मुरली का सार था होली की सौगात, फरिश्ता का ड्रेस, उसको क्या करो, बाबा ने कहा कि बीच बीच में क्या करो, धारण करो और अपने पुराने संस्कारों की होली जलाओ। उसके बाद 10वीं मुरली, वो सब आप लोगों ने सम्मुख सुनी है, और उस मुरली का सार ये था, जो भी हमें ज्ञान के खजाने प्राप्त हुए हैं उसको स्वयं में समा करके कार्य में लगाओ, और क्या करो, उसको कार्य में लगाना है और अनुभव की अथॉरिटी बनना है। जो इस खजानों को कार्य में लगाएगा वही क्या बनेगा, अनुभव की अथॉरिटी बनेगा। तो इसी तरह इस सीजन में टोटल ये 10 मुरली चली, और इस 10 मुरली का ये टोटल सार था। अगर हमें इतनी भी बातें याद रहेगी तो भी पूरा सीजन हमें याद रहेगा, और रोज रात्रि हमें यही बातें चेक करनी है। अभी 6 मास बीच में सीजन नहीं है, तो हमें इसी बातों को लेकर के पुरुषार्थ करना है, और इस बात को इतना पक्का करके आना है, इसकी धारणा करके आनी है। और जब आप अगले साल जब बाबा से मिलने के लिए आएंगे, उस समय बाबा बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब कोई टीचर होमवर्क देता है और जब बच्चा करके आता है तो टीचर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, टीचर उसको दुआएं देता है। तो इस तरह से ये बाबा की 10 वाणियां, और इसको कैसे याद रखना है वो आपको सभी को टॉपिक बताया। उसके बाद अगले भी बाबा की मुरली चलेगी, तो रोज रात्रि को हमें यही बातें चेक करनी है। आज मेरी संतुष्टता रही, आज मेरा दिल सच्चा और साफ था, बाप के साथ स्नेह का अनुभव किया, आज मैंने फुल स्टॉप लगाया, संपूर्ण पवित्रता की धारणा रही, एक राज्य एक धर्म मेरे इस दिल में रहा, निगेटिव बातों को पॉजिटिव मिला करके मैंने समय संकल्प स्वास्थ्य सफल किया, शुभ चिंतन शुभ वृत्ति शुभ वायुमंडल फैलाया। इस तरह से इन्हीं बातों को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो पूरी आपको रोज मुरलियां याद आएगी, और बार बार चेक करने से जब आप वो सारा दिन में गलती करते हैं तो उस समय आपको वो बात याद आएगी, रात को तो मुझे चेक करना है, और उससे वो बाबा ने जो कही भी बातें आपके आचरण में आ सकती है। इसके साथ इस सीजन में बाबा ने और भी कई बातों का अटेंशन खिंचवाया, और हर मुरली में बाबा ने विशेष अचानक एवरेडी और बहुत काल का अभ्यास इस बात को भी बहुत 2-4 वाणियों में दोहराया। आलस और अलबेलापन, इस दो बात के तरफ भी अटेंशन दिलाया है, 2-3 वाणियों में दिया है। क्रोध रूपी भूत के तरफ भी बाबा ने अटेंशन दिलवाया है 2-3 वाणियों में। इसके साथ साथ मैपन और मेरापन, इस बात को भी बाबा ने 2-3 वाणियों में अटेंशन खिंचवाया। इसके साथ साथ शुभ भावना और शुभ कामना, और चेहरा चलन के द्वारा सेवा। तो इस तरह से इस सीजन की बाबा की हमारे लिए शिक्षा और सावधानी थी। तो इसको हमें क्या करना है, जीवन में लाना है। तो अब इन मुरलियों को हम अपने जीवन में कैसे लाएं, जैसी पहली बाबा की मुरली चली थी, संतुष्ट मनी बनकर के क्या करो, संतुष्टता का संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जहां है वहां सभी प्राप्ति है। संतुष्ट आत्मा उसकी एक नेचुरल नेचर बन जाती है, और इसे वायुमंडल फैलता है। लेकिन संतुष्ट कौन रह सकता है? जो सहनशील है वही संतुष्ट रह सकता है। जो एडजस्टमेंट जिसकी है वही संतुष्ट रह सकता है। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाने का अभ्यास करता है वही क्या रह सकता है? संतुष्ट रह सकता है। संतुष्ट वही रह सकता है जो अंतर्मुखी है। इसीलिए हमें क्या करना है? स्वयं भी संतुष्ट रहना है। और संतुष्ट वही रह सकता है जो कर्म गति को समझता है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक के गुण अपने अपने हैं, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। जिन्होंने ड्रामा को समझा, कर्मों को समझा, वही हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकता है। संतुष्ट रहने वालों के सामने परिस्थितियां विघन, बाबा ने कहा था कि पपट शो एक कठपुतली का जैसा खेल है, और वो सदा जो संतुष्ट रहता है सदा विजयी बनेगा। कोई भी परिस्थिति में विजयी बनेगा, साक्षी दृष्टा रहेगा। इसलिए हमें संतुष्ट रहना है। कई कई क्या करते हैं, कहते नहीं नहीं ये ऐसा ही है, इसलिए उसको जोर से बोलना पड़ता है, रोब दिखाना पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे कोई रोब दिखाने से वो सुधरेगा नहीं। रोब दिखाना ये भी आपने क्या की? गलती की। तो बाबा ने उसमें बहुत अच्छी एक बात कही थी, आप दूसरे की गलती देखते हैं लेकिन आपके फोर्स वाले बोल, फोर्स वाले संकल्प क्या ये ठीक है? इसलिए इसके तरफ अटेंशन, क्योंकि अगर आप असंतुष्ट होंगे, असंतुष्टता से वायुमंडल के ऊपर असर पड़ता है। अगर दूसरा भी आपसे असंतुष्ट होता है, उस असंतुष्टता से आपको भी असंतुष्टता पहुंचेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संतुष्ट रहो और सर्व को क्या करो? संतुष्ट करो। इसीलिए हमें क्या करना है? बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो इसलिए अभी हर परिस्थिति में क्या रहना है? संतुष्ट रहना है। और जब संतुष्ट रहेंगे तो हमारा चेहरा, चलन ये भी क्या हो जाएगा? सेवा का साधन बनेगा। इसलिए हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना है। उसके बाद इसका विस्तार तो एक एक मुरली के गहराई में जाओ तो बहुत लंबा विस्तार है। अब खुद चिंतन करना कि कैसे हम संतुष्ट रहे और हम असंतुष्ट क्यों होते हैं। जो पाना था सो पा लिया, अब हमें असंतुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते हैं? असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस वर्ष में हमें संतुष्ट रहने का पुरुषार्थ करना है। तब चेहरे और चलन के द्वारा भी सेवा कर सकेंगे। उसके बाद बाबा की दूसरी मुरली थी, सच्चा दिल और साफ दिल बन करके क्या करो? परमात्मा स्नेही बनो। और जो परमात्मा स्नेही बनेगा वही अनुभव की क्या बनेगा? अथॉरिटी बनेगा। स्नेही, स्नेही सदा लवलीन रहता है। स्नेही जो होता है उसके लिए जैसे परमात्मा की छत्र छाया रहती है। जो स्नेह में रहता है उसको मेहनत नहीं लगती। स्नेह, जो स्नेही रहता है वो सदा व्यर्थ से बच करके रहता है। इसलिए हमें सदा परमात्मा स्नेही बनना है। लेकिन परमात्मा स्नेही कौन बन सकता है? जिसका दिल कैसा हो, साफ और सच्चा। अगर और लोगों के तरफ आपका स्नेह बटा हुआ है, किसी विशेषता के तरफ, कोई मोह के अंदर, मोह के कारण किसी से स्नेह है, तो बाबा ने कहा था उस मुरली में, अगर आपके स्नेह में कोई लीकेज होगी तो परमात्मा स्नेही नहीं बन पाएंगे। अगर स्नेह आपका चारों तरफ बटा हुआ है तो परमात्मा स्नेही नहीं बन सकते, और जो परमात्मा स्नेही नहीं बन पाएगा हर प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर पाएगा। अगर हर प्राप्तियों का अनुभव करना है तो दिल कैसा चाहिए? सच्चा और साफ। दिल में एक बाबा के प्रति हमारा स्नेह, ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। अगर ज्ञान के साथ साथ हमारे जीवन में स्नेह नहीं है तो वो ज्ञान का बीज अंकुरित नहीं होगा, उसका फल नहीं आएगा, उसका बल नहीं मिलेगा। इसलिए केवल रूखे ज्ञानी नहीं, लेकिन अंदर से हमारा स्नेह हो। लेकिन स्नेही कौन बन सकता है? परमात्मा स्नेही वही बन सकता है जो सदा हां जी करता है। किसमें? जो परमात्मा के हर डायरेक्शन प्रमाण चलता है, हां जी, उसके लिए परमात्मा भी बंधा हुआ है, वो भी हां जी करेगा, हाजुर हाजिर हो जाएगा। यह है बाबा को स्नेह में बांधने का तरीका। अगर परमात्मा स्नेही बनना है उसके हर श्रीमत के लिए क्या करना? हाजी करना। नहीं तो कई भाई बहन बोलते हैं कि हम तो चाहते बाबा से प्यार करें, लेकिन बाबा का रिस्पांस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जरूर हम कुछ उसके श्रीमत में क्या करें, आलस और अलबेलापन ओशर करके किनारा कर रहे हैं। इसलिए जो बाबा के श्रीमत प्रमाण चलता है उसके लिए बाबा का स्नेह मिलता रहेगा, और उसके लिए फिर याद की यात्रा कोई कठिन नहीं है। योग लगाना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए हमें स्नेही बनना जरूरी, तब हर प्राप्तियों का अनुभव होगा, हर शक्तियों का, हर गुणों का अनुभव होगा। अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे, और जो अनुभव की अथॉरिटी है वो हलचल में नहीं आएगा। अनुभव क्यों नहीं होता? स्नेह की कमी है। इसलिए सच्चा स्नेही, सच्चा दिल। उसके बाद बाबा की थी 30 नवंबर की मुरली, फुल स्टॉप लगा करके संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश के द्वारा क्या करो, सुख और शांति की अंश ली दो। बाबा ने उसमें पवित्रता की बहुत गहराई बताई थी। हम सभी असंभव बातों को संभव करने वाले हैं, इसलिए पवित्रता की धारणा, जितना पवित्रता की धारणा होगी उतना उसको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। पवित्रता सुख शांति आनंद प्रेम की जननी है, मां है। अगर पवित्रता की कमी है मनसा वाचा कर्मणा में तो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए संपूर्ण पवित्रता का व्रत, व्रत लेना अर्थात अपने वृत्ति को परिवर्तन करना। इसलिए हमें चेक करना है कि मेरी पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा से कहीं लीकेज तो नहीं है। कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहे, इसलिए संपूर्ण पवित्रता। और इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे जो व्यर्थ है उसके लिए क्या करो, फुल स्टॉप लगाओ। और वही बाबा ने होमवर्क भी दिया था 18 जनवरी तक फुल स्टॉप लगाने के लिए, क्योंकि जो फुल स्टॉप लगाता है वही बिंदी बन सकता है। जो बिंदी नहीं लगाएगा व्यर्थ में, और व्यर्थ कौन सा है, बाबा ने उसमें तीन बातें बताई थी, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। इस तीन पर को छोड़ो और परोपकारी बनो। इसलिए इस व्यर्थ को क्या करना, में फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप वही लगा सकता है जिसके पास ज्ञान का फुल स्टॉप हो, फुल स्टॉक होगा वही फुल स्टॉप लगाएगा। उसकी शक्तियां बचेगी और तब जाकर के हम मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति कर पाएंगे। नहीं तो आज हमारे ये लीकेज पवित्रता की पावर लीकेज हो रहे, मनसा वाचा कर्मना, चाहे बोल के द्वारा चाहे संकल्प के द्वारा। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप से पवित्रता की चमक बढ़ेगी। बाबा ने उसमें कहा कि याद करो अपनी पवित्रता, आदि अनादि स्वरूप में, जैसे आकाश में सितारे होते हैं चमकीले, इसी तरह हमारी आत्मा में भी चमक थी, परमात्मा के नजदीक परमधाम में थे पवित्रता के कारण। और आदि में भी सत्युग में कितनी रॉयल्टी थी पवित्रता के कारण, भक्ति मार्ग में भी मध्य में भी पवित्रता के कारण। भले मंदिर छोटा है, मूर्ति छोटी है, लेकिन कितनी रॉयल्टी थी पवित्रता के कारण। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस पवित्रता को बढ़ाओ, और जिसके पास ये पवित्रता है वही मनसा के द्वारा सकास देने की सेवा कर सकता है। अनेक आत्माएं पुकार रहे, विश्व की आत्माएं पुकार रहे, प्रकृति को पावन बनाने के लिए। पवित्रता जितनी है ये सेवा कर सकते, इसलिए व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना। उसके बाद बाबा की चली थी 15 दिसंबर वाली वाणी, एक राज्य एक धर्म, लॉ और ऑर्डर का ये राज्य स्थापन हो रहा है। ऐसे समय पर हमें स्वयं का परिवर्तन कर क्या करना है, विश्व परिवर्तक बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चों को तीन तखत मिले, एक है भ्रुकुटी का तखत, दूसरा है बाबा का दिल तखत, और तीसरा है भविष्य में विश्व का राज्य तखत। और अभी नई दुनिया आने वाली है। नई दुनिया की विशेषता क्या है, वहां क्या होगा, एक राज्य होगा। तो उस एक राज्य की दुनिया में जाने के लिए बाबा ने कहा कि चेक करो क्या आपके भी दिल में एक राज्य है, या कभी कभी माया का भी राज्य चालू हो जाता है, कभी कभी माया के मत पर भी चलते हैं या बाबा के मत पर भी चलते हैं। अगर दो राज्य होंगे आपके दिल में तो उस एक राज्य की दुनिया में कैसे जा सकें। तो इसीलिए चेक करना है और माया के राज्य को क्या करना है, खत्म करना है। एक राज्य एक धर्म अर्थात धारणा, एक धर्म। तो क्या पवित्रता की हमारी धारणाएं हैं? अगर पवित्रता की धारणा नहीं तो उस एक धर्म के राज्य में कैसे जाएंगे? नेचुरल नेचर हो, लॉ और ऑर्डर। लॉ क्या है और ऑर्डर क्या है? एक बाप के श्रीमत प्रमाण चलना, यह है ऑर्डर। तो क्या उस ऑर्डर प्रमाण हम चलते हैं? और लॉ क्या है? बेफिकर बादशाह। अगर अभी भी कोई फिकर है, कोई भी बात की फिकर है, फिकर वाला उस दुनिया में कैसा जाएगा? इसीलिए बाबा ने कहा कि चेक करो, वो आने वाली नई दुनिया के लिए आपके संस्कार बने हैं, आप इसके लिए एवर रेडी है। जो इस शरीर रूपी दुनिया में जिसका एक राज्य होगा, एक धर्म होगा और इसमें लॉ और ऑर्डर होगा, तब जाकर के उस दुनिया में जा सकेंगे। तो अपने आप को चेक करने के लिए बाबा ने कहा था। इसीलिए बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति को प्रयोग में लाकर के क्या करो, विश्व परिवर्तक बनो। इसीलिए रोज अपना दरबार लगाना है, कहीं माया कहीं से घुसती तो नहीं। जैसे पहले जमाने में किले रहते थे और उस किले के कई दरवाजे रहते थे और राजा अंदर रहता था, उस दरवाजे में कोई ना कोई सिपाही बैठता था, अगर कोई भी आता है उसकी चेकिंग होती थी, उसको पूछते थे कहां जा रहे, किसी लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये शरीर हमारा एक किला है और इस किले के अंदर राजा रहता है, आत्मा राजा, और इसके लिए कई दरवाजे हैं, आंग कान मुख। इस दरवाजे में भी हमें क्या करना है, पहरे वाले रखना है, अटेंशन रूपी पहरे वाला। लेकिन अभी क्या होता है, कान से जो चाहे घुसते व्यर्थ बातें, आंखों से जो चाहे घुस जाता है और राजा की हालत खराब करते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, आत्मा राजा तो चाहता है कि कोई ना आए, लेकिन कान कहता है क्या, व्यर्थ सुन लेता है, आंखें व्यर्थ देख लेते। इसलिए बाबा कहते बच्चे, एक राज्य एक धर्म स्थापन करो, पहले इस दुनिया में करो, अपने शरीर रूपी दुनिया में, फिर बाद में इस दुनिया में अपने आप हो जाएगा। तो हर एक इसके लिए दूसरे को नहीं देखना है, लेकिन अपने आप को देखना है कि क्या मैंने अपने विश्व में, कहते ना हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया होती है। अपनी अपनी दुनिया कौन सी? हर एक का शरीर अपना अपना है। तो अपने शरीर के ऊपर क्या करना है, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, जो स्वराज्य अधिकारी वही विश्व का राजा बन सकता है। तो इसकी भी इस वर्ष में हमें चेकिंग करनी है, उसके बाद नए वर्ष की बाबा की मुरली थी। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति, क्योंकि बाबा ने इस वर्ष में एक नई शक्ति, बाबा ने कहा कि इसका प्रयोग करो और इस परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करके निगेटिव बातों को पॉजिटिव में ला करके क्या करना है, अपना हर संकल्प और हर श्वास क्या करना है, सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। इस वर्ष का बाबा ने कहा कि लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना। तो ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण कैसे बने, किस आधार से बने? उन्होंने समय सफल किया, सफलता के आधार से संपन्न बने। इसी तरह बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हें भी बाप समान बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सफल करना पड़ेगा। जो समय को सफल करेगा वो सत्युग में, सत्युग से लेकर के फुल समय से वो राज्य में आएगा। सत्युग से शुरुआत से लेकर के आएगा, जो समय को बर्बाद करेगा वो सत्युग में स्टार्टिंग में नहीं आएगा। जो ज्ञान के खजानों को सफल करेगा वह भविष्य में नॉलेजफुल होगा, उसको कोई वजीर वगैरह रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसका राज्य कैसा होगा, अखंड अटल होगा, निर्विघ्न होगा। और जो श्वास को सफल करेगा वो 21 जन्म स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, सफल करना है और तब जाकर के बाप समान बन सकते हैं। तो बाप समान बनने के लिए सफल करना है और वही बातें इसी ग्रुप में भी बाबा ने खजाने बढ़ाने के लिए कही। तो इसलिए ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमें अपने खजानों को क्या करना है, सफल करना है। और उसमें और भी कई बातें बाबा ने अटेंशन खिंचवाई थी। इस वर्ष में मनसा के द्वारा क्या देना है, कर्मणा के द्वारा क्या देना है, सौगात कौन सी गुणों की गिफ्ट दो, कर्मणा के द्वारा, मनसा के द्वारा सकास दो, शुभ भावना शुभ कामना दो, आदि आदि कई बातें बाबा ने कही। और निगेटिव बातों को बाबा ने कहा कि ऑपोजिशन आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन क्या करो, आप अपने पोजीशन में रहो। जो ऑपोजिशन के समय निगेटिव बातों को पॉजिटिव में करके पोजीशन में रहता है वही समान बन सकता है, वही सफल कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा बाप समान बनने का चेक करने के लिए बाबा ने कहा था कि हर बोल क्या बाप समान है, मेरा हर संकल्प बाप समान है, और तब जाकर के बोल बोलने हैं, संकल्प करनी। उसके बाद बाबा की चली थी 18 जनवरी की मुरली। और वैसे ही 18 जनवरी खास सभी बाबा के याद में स्नेह में खोए रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे स्नेह से मेहनत से मुक्त रहते हैं, लेकिन अभी 18 जनवरी 40 साल पूरे हुए और उसके लिए चार बातें कही थी। एक तो शुभ चिंतक बनो, सबके सहारा दाता बनो, किसी से नफरत भाव घृणा भाव वैर भाव ये न हो। तो चेक करो क्या मेरा सभी के साथ शुभ चिंतक हूं। अगर आप किसी के प्रति अशुभ चिंतक है उसकी निशानी क्या है, अशुभ चिंतक वाला किसी के प्रति अशुभ चिंतन होगा तो क्या करेगा, उसे किनारा करेगा, उसकी महिमा सुन नहीं पाएगा, उसको गिराने की कोशिश करेगा, उसकी ग्लानी करेगा। अगर आप किसी के बारे में किसी की ग्लानी करते हैं, किसी की महिमा नहीं सुनना चाहते हैं, किसी की बातों को इधर उधर फैलाते हैं, तो ये समझो कि उस व्यक्ति के बारे में आपका क्या है, अशुभ चिंतक है। और अशुभ चिंतक वाला उसकी वृत्ति भी कैसी होगी, अशुभ होगी। और जिसकी अशुभ वृत्ति है वो वायुमंडल कैसा फैलाएगा, अशुभ फैलाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब कौन सी सेवा करो, वायुमंडल को शुभ बनाने की सेवा करो, यह प्रतिज्ञा करो। और इसके लिए बाबा ने कहा था कि यह जिम्मेवारी सभी को लेना है, हर एक को लेना है कि मुझे वायुमंडल को अच्छा बनाना है, चाहे सेंटर का वायुमंडल, चाहे कोई गीता भाषा का वायुमंडल, अपने घर का वायुमंडल, इतना ही नहीं जिस शरीर में रहते हैं वहां का भी वायुमंडल, और वायुमंडल कब बनेगा? जो शुभ चिंतक होगा, जिसकी वृत्ति शुभ होगी, एक व्यक्ति के प्रति भी घृणा भाव नफरत भाव न हो, तब जाकर के वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। और इसके लिए बाबा ने कहा कि आपने चिंतन की धारा को बदलो। चिंतन कैसा चाहिए? शुभ चिंतन चाहिए। और उस मुरली में बाबा ने खास शुभ चिंतन करने के लिए मन की दिनचर्या बनाने के लिए कहा था। रोज अपने मन को क्या करो, कोई ना कोई सोमान दो और उसको दिन में 12-13 बार चेक करो। मन का टाइम टेबल बनाओ। इसलिए मैं मन को क्या करना है, रोज कोई ना कोई सोमान दे करके चिंतन शुभ करना है। जैसा चिंतन होगा वैसा चिंतक बनेगा, वैसी वृत्ति बनेगी, वैसा वायुमंडल बनेगा। वृत्ति से वायुमंडल फैलता है। मुरली का चिंतन को कहेंगे शुभ चिंतन, सोमानों के चिंतन को कहेंगे शुभ चिंतन, आत्म चिंतन परमात्म चिंतन को कहेंगे शुभ चिंतन। अगर इसके विपरीत किसी का परचिंतन करते हैं, किसी के अवगुणों का वर्णन करते हैं, किसी के कमी कमजोरी का वर्णन करते हैं, यह है अशुभ चिंतन। इसलिए अपने चिंतन की धारा को बदलना है। और उसके बाद बाबा की चली थी 5 फरवरी की वाणी, सेवा करते बाबा ने कहा कि डबल लाइफ स्थिति का अनुभव करो और अशरीरीपन का अभ्यास करो। और उसके लिए बाबा ने दादी का एग्जाम्पल दिया था उस मुरली में। चलो ब्रह्मा बाबा तो आप कहेंगे उसमें शिव बाबा था, मम्मा भी कहेंगे वो जगदम्बा थी, लेकिन दादी तो आप सबके सामने रही। लेकिन कारोबार करते सब कुछ करते दादी ने क्या किया, डबल लाइट रही, हल्की रही। इसी तरह हमें भी संबंधों में हल्का, व्यवहार में हल्का, संस्कार में भी हल्का, जो हल्का होगा वही उड़ सकता है। क्योंकि बाबा ने कहा कि अब चलने का समय पूरा हुआ, अब उड़ने का समय है, पुरुषार्थ का टाइम पूरा हुआ, अब तीव्र पुरुषार्थ का टाइम है। इसीलिए फरिश्ता, और फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन पाएंगे। तो अगर मुझे भविष्य में देवता बनना है, ऊंच पद प्राप्त करना है, तो क्या बनना है, फरिश्ता बनना जरूरी है। फरिश्ता कौन बन सकता है, जो ब्राह्मण है वही फरिश्ता बन सकता है। ब्राह्मण जो पक्का ब्राह्मण है, पक्का ब्राह्मण किसको कहेंगे, जो ईश्वरीय नियम मर्यादा पर चलता है, मुरली के पर अटेंशन, अमृत वेले के तरफ अटेंशन, सारा दिन की ईश्वरीय नियम मर्यादा के तरफ अटेंशन, जो पक्का ब्राह्मण है वही फरिश्ता बनेगा। और जो फरिश्ता बनेगा वही क्या बनेगा, देवता बनेगा। नहीं तो कच्चे ब्राह्मण होंगे तो सत्युग में तो जाएंगे लेकिन छोटा मोटा कुछ पद मिल जाएगा। इसलिए अगर सत्युग में ऊंच पद प्राप्त करना है तो पक्के ब्राह्मण बनना है। तो इस वर्ष में हमें यही लक्ष्य रखना है, हमें लोकलाज या आलस अलबेलापन ये सब बातों को साइड पर रख करके इस वर्ष में थोड़ा सा तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे, ऐसे नहीं रात को जाग जाकर के योग लगाया और सारा दिन किसी का परचिंतन किया, व्यर्थ सोचा, इसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात सबके साथ एडजस्ट होकर के चलना, सबके गुण देखना, सदा संतुष्ट रहना, ईश्वरीय नियम मर्यादा पर चलना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो हमें सदा हल्के रहना है। जो बीती हुई बातों को बिंदी लगाता वही हल्का रह सकता है, जो फुल स्टॉप लगाता वही हल्का रह सकता है। इसलिए हमें हल्का रहना है, और जो हल्का रहेगा वही अशरीरी बन सकता है, और अशरीरी बनने से वायुमंडल भी क्या फैलेगा, शुभ फैलेगा। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास, और यह अभ्यास विनाश काल में बहुत काम आने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा कि क्या करो, ये फरिश्ता बनने का अभ्यास करो, फरिश्ता से आप अशरीरी बनेंगे। उसके बाद बाबा की चली थी शिवरात्रि की मुरली, और उस मुरली में बाबा ने कहा था कि क्या करो, जो बीता उसको भूल जाओ और आप अच्छा पुरुषार्थ करो, आप 90% करो, मैं 10% आपको एक्स्ट्रा मार्क दे सकता हूं। और उसके लिए तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए अपना हर संकल्प कैसा हो, समर्थ, हर श्वास समर्थ हो। कैसे होगा, क्या होगा, आलस आलबेलापन ये नहीं, लेकिन मुझे करना ही है। सोमान को कहेंगे समर्थ संकल्प, तो इसलिए समर्थ संकल्प हमें चलाना है। उसके बाद वैसे टाइम तो फास्ट चल रहा है, टॉपिक बहुत लंबा है, शॉर्ट में पूरा करेंगे। उसके बाद बाबा की होली की मुरली, और होली की मुरली में बाबा ने विशेष पुराने संस्कारों की होली करने के लिए कहा, पुराने संस्कार की होली, और जो फरिश्ता ड्रेस जो बाबा ने दिए हैं उसको बीच बीच में क्या करना है, पहनना है। हर एक का ऊपर भी एक शरीर है, संपूर्ण शरीर, तो कभी कभी क्या करो, जा करके उस शरीर में को धारण करो, और बाबा ने कहा कि वहां आकर के थोड़ा समय बैठो, बीच बीच में उसका अभ्यास करो, क्योंकि ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, इसलिए हमें बीच बीच में फरिश्ता ड्रेस धारण करना है, और पुराने संस्कारों की क्या करना है, होली करनी है। बाबा ने कहा कि माया आती है तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी खातिरी करते हैं, जब खातिरी करेंगे तो रोज आएगी फिर। इसलिए अब अलस और अलबेलापन को त्याग करके माया को क्या करो, दूर भगाओ, और कंबाइंड स्वरूप में रहो, सदा कंबाइंड। इसलिए जो पुराने संस्कार है उसके बार बार वश में नहीं होना है। पुराने संस्कार के वशीभूत क्यों होते, क्योंकि जब पुराने संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, जो की कमाई चट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उससे व्यर्थ वायुमंडल भी फैलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि जो पुराने संस्कार आए उसको बीती को क्या करो, बिंदी लगाओ। और उसके बाद लास्ट की बाबा की मुरली, जो भी बाबा ने खजाने दिए हैं उस खजानों को क्या करना है, कार्य में लाना लगाना है, और अनुभव की अथॉरिटी बननी है। ज्ञान का खजाना सफल करेंगे तो क्या मिलेगी, क्योंकि खजाने सफल करने से प्राप्तियां बहुत सारे हैं। ज्ञान का खजाना जो सफल करेगा उसको क्या प्राप्ति होगी, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अगर अभी भी आपके जीवन में आप मुक्त नहीं है, कोई बंधन है, इसका मतलब ज्ञान का खजाना फुल नहीं है, उसका स्टॉक नहीं है। कई क्या करते, चाहते नहीं है तो भी वश हो जाते हैं, मुक्त नहीं है। इसीलिए ज्ञान के खजानों को सफल करना है। उसके बाद योग का खजाना, योग के खजाने से शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर कोई शक्ति की कमी है, इसका मतलब योग की खजाने की कमी है, तो उस खजानों को बढ़ाना है। धारणा के खजाने से गुणों की प्राप्ति होती है, जितना धारणाएं करेंगे गुण आपके जीवन में दिखाई पड़ेंगे। अगर गुणों की कमी है तो धारणाएं कमी है। और सबसे बड़ा सेवा का खजाना, सेवा के खजाने से खुशी, और सबसे बड़े से बड़ा खजाना बाबा ने कहा संगम युग का, समय का खजाना। तो संगम युग हमें प्राप्ति करने का युग है, तो इस समय को सफल करना है। समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। और खजाने जमा करने के बाबा ने तीन विधि बताई थी, सो पुरुषार्थ, जितना आप योग लगाते हैं अपने आप खुद पुरुषार्थ करते हैं उससे भी आपका खजाना जमा होगा। दूसरा है संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, इससे भी खजाना जमा होता है। और तीसरा सेवा से। तो इस तरह से हमें मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। तो इस तरह से हमारा जो खजाना कमी है उसको क्या करना, अब बढ़ाना है और खजाने से संपन्न बन करके अनुभव की अथॉरिटी बनना है। इस तरह से ये पूरा सीजन सागर को आपको एक गागर में भर के ये बातें आपको बताई, तो इस बातों को आप अच्छी तरह फिर आप पढ़ते रहेंगे, बाबा की 11 मुरली चलेगी। अगर 11 मुरली में से एक मुरली भी रात को रोज रिवाइजेशन करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तो एक मास में कितना बार पढ़ सकेंगे? 3 बार पढ़ सकेंगे। तो इसी तरह इस सीजन की मुरली के तरफ अटेंशन देना है। और यही वर्तमान समय हमारी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, और बाबा भी वर्तमान समय हमारे से यही चाहना है बाबा की, मेरे बच्चे संतुष्ट रहे, अनुभव की अथॉरिटी बने। तो इन बातों का हमें समय अनुसार पुरुषार्थ करना है और यही करके अगले बार बाबा के सामने आना है, तो बाबा आपको देख करके खुश होंगे। ठीक है, ओम शांति।